कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिशे हे कृष्ण करुणाश दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरे हा देवी कापु हरगदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवतो दुभतारिति अस्य प्रसादमुद्धस्य मनुष्यत्वं गन्धर्विकेतौ गणी गणनां विधि अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरम् यत्यञ्जागुदरोचि संविदधतां पट्टं वरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् भक्त्या विघ्नापरादलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमत् कृपामयीं त्वां प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नम् अपायन्मानुनिभेष्टमन्दं कृपाम्बुधिर्जपरदुःखदुःखी सनातन श्रीचैतन्यमनोदृष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति यं प्रभृजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा जीवाश्मि न जीवामि त्वया विना हम लोग बृहद भगवतामृत से बृहद भगवतामृत की कथा समाप्त होने पर उसमें से कुछ भक्ति रसायन सुना रहे हैं। जैमिनी ऋषि जन्मेजय को और परीक्षित जी मैया को और सनातन गोस्वामी हम लोगों को ये भक्ति रसायन सुना रहे हैं। भक्ति रसायन मैंने वह होता है जबकि किसी कारण से शरीर सूखने लगता है और पाकस्थली सूख जाती है, कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर सकती, तो रसायन देने से फिर नाड़ियाँ पुष्ट हो जाती हैं और फिर पेट का फंक्शन ठीक हो जाता है। ऐसे ही भक्ति राज्य में जिनको लोभ उत्पन्न हो गया है, रागान भक्ति चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये रसायन है। पहले हम लोगों ने वर्णन किया था ब्रह्म स्तुति के कुछ श्लोकों को सनातन गोस्वामी ने बताया, जिसको उन्होंने पहले सब वर्णन किया है उन्हीं श्लोकों को फिर से यहाँ पर अवतारणा कर रहे हैं। इसके पहले बतलाया था जो हे कृष्ण विष्णु विष्णु कुल के कमल के प्रकाशित करने वाले दिवाकर के समान और आप पृथ्वी देवता भी गोकुल के समृद्धि प्रदाता हैं। हे पृथ्वी के समस्त राक्षसों को विमर्दन कर आपने, आप सकल के पूज्य हुए हैं, इसलिए जब तक कल्प रहेगा आकल्प मर्क अर्हन भगवान नमस्ते, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ये कल्प रहेगा, तब तक आपके चरणों में मैं निरंतर कोटि कोटि प्रणाम करता रहूंगा। भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करके अब कर रहे हैं। धन्य मद धरणी तृण विरुत्स विरुद्ध तत् पाद स्पर्शो दुर्मलता कर जाभिमृष्ट नद्यो अग्रय खग मृगाश दयावलोकई गोपो अंतरेन भुजयो अपि जत प्रिहास्ति। ये पौगंड लीला के साथ में किसो अवस्था जब आने लगी तब की ये बात है। बया संधि के समय का ये वर्णन है। कृष्ण और बलदेव सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। वन में पहुंचे, वन की शोभा देखा, देख करके उन्होंने पृथ्वी को देखा। वहां की वन लता पर्वों को, पेड़ों को देखा। देखा वहां की शोभा देख करके कृष्ण अत्यंत भावुक हो उठे। गोपियों की तरफ में उन्होंने दृष्टि की, सखाओं की तरफ में देखा, भौरों की तरफ में देखा, कोकिल की तरफ में देखा, मृगों की तरफ में देखा, अत्यंत भावाविष्ट हो गए। भावाविष्ट हो गए किस लिए? अपना उन वस्तुओं के ब्रज के प्रति भावना है और अपने प्रति उनकी सेवा की भावना को देख करके, उद्दीपन के रूप में देख करके अत्यंत भावाविष्ट हो गए और उसी को छल बहाना कर बलदेव जी के ऊपर में आरोप करने लगे। आरोप करके अपनी महिमा अपने ही वर्णन कर रहे हैं। यदि डायरेक्ट रूप में कहते जे ये मेरा यह है सब, मेरे लिए वन इतने सुंदर है, मेरे लिए पृथ्वी धन्य है, मेरे लिए ब्रजवासी धन्य है, तो यह दोष होता, त्रुटि होती, अपनी प्रशंसा अपना कर। इसलिए घुमा करके वो बलदेव जी पर आरोप करके बलदेव जी के बहाने अपने ही मानो वो महिमा गान करने लगे। धन्यम धन्याम धरणी तृण विरुप सतत पाद स्पर्शो दुर्मलता करजाभिमृष्ट नद्यो अग्रय खग मृगा सदयावलोकई गोप्यो अंतरेण भुजयोरपि जत प्रिहास्ति। आज धरणी पृथ्वी देवी धन्य है, आज के पृथ्वी देवी धन्य, कारण तिनी रोमांचित एवं पुलकित आज के ताके देखा जाए। आज वो रोमांचित और पुलकित हो रहे हैं। उनके तृण गुल्म लता इत्यादि ये सब रोमराजी है, ये इसके जो तृण लता गुल्म इत्यादि आपके पद के स्पर्श से और वृक्षलता इत्यादि आपके फूल और फलों को चुनने के बहाने उनका स्पर्श करके आपके हाथों का कर स्पर्श पाकर आज कृतार्थ हो गए। पृथ्वी को तृण लता गुल्म को ये पायों के स्पर्श, और जो ऊंचे ऊंचे वृक्षावलियां हैं उनको हाथ का स्पर्श दे करके आपने उनको कृतार्थ कर दिया है, बलदेव जी के लिए कर, या आप ये लोग कृतार्थ हो गए हैं आपके पद स्पर्श और कर स्पर्श से। नदियां नद्यो अद्रय, नदियां गिरी माने पर्वत, पक्षी और मृग आदि जितने पशु और पक्षी कुल हैं आपके सदैव अवलोकन से दृष्टिपात से आज ये लोग कृतार्थ और धन्य हो गए। इसका कारण बात है, किसी को पैर से क्यों और किसी को हाथ स्पर्श से क्यों और सदैव अवलोकन से किसी को क्यों, यहाँ तक कि जत स्पृहा स्त्री, लक्ष्मी जी जिसके लिए स्पृहा करती हैं और उनको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा लक्ष्मी जी के लिए स्पृहणीय अर्थात अभिलेषणीय जिसकी अभिलाषा केवल मात्र करती हैं उनको प्राप्त नहीं करती। गोपियों का यह सौभाग्य जो लक्ष्मी जी अभिलाषा मात्र करते हैं उनको वह सौभाग्य मिला, वो कृतार्थ, वो क्या भुज बंधन रूप आलिंगन भुजाओं के द्वारा कृष्ण उनको भुजाओं के द्वारा उनको स्पर्श किया। गोपियां आज इसलिए धन्य हो गई। सनातन गोस्वामी जी इसकी टीका में बतला रहे हैं कि साधारण रूप से ब्रजभूमि और ब्रजवासियों की महिमा का वर्णन करते ब्रह्मा जी रोमांचित और पुलकित हो रहे हैं। अब उस श्लोक में तदभूरी भाग्यमी हूं उन्होंने वर्णन किया कुछ, फिर भी उनका चित्त नहीं माना। अब ये अपना अभिष्टतम जो अभिलाष है उसको ये व्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण ही स्वयं वर्षा काल में या दूसरे काल में जाते हैं वन में, उस समय में कृष्ण स्वयं जो कह रहे हैं उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं। कृष्ण और बलराम गोचारण में गए हुए, ब्रह्मा जी का तो प्रसंग वहां तक समाप्त हो गया। अब कृष्ण बलदेव जी वन में गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। खूब सुंदर सुवेश है उनका, मोर मुकुट इत्यादि धारण किए हुए, नंगे पैर हैं। बलराम जी को लक्ष्य करके बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, उसी श्लोक को एक श्लोक में उन्होंने पृथ्वी का कैसे कृतार्थ हुई, वृक्ष लता नदी कैसे कृतार्थ हुई, ये सब परीक्षित महाराज जी एक ही श्लोक में बतला रहे हैं। जथा पौगंड की बात, पौगंड लीला, गोपाल लीला मैंने गोपालन कर रहे हैं, गोपालन लीला कर रहे हैं। गोप वेश में और सखाओं को लेते हुए वन में गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, गए हुए हैं। उस समय की शोभा, वन की शोभा का वर्णन करते हुए अपनी महिमा को ही बलदेव जी पर आरोप करके कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं, यह दोष है, कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं वर्णन करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु तुल्य होता है। तो भगवान ने इसी प्रकार से अपनी महिमा तो व्यंजन करना है, किंतु बलदेव जी प्रभु के माध्यम से ये सब कुछ बोल रहे हैं। दूसरी बात, अपने ज्येष्ठ भ्राता, पिता तुल्य भ्राता उनके प्रति गंधस्थ है, कोई बिजली से कहीं जल तो नहीं रहा,
रामनार
गंध रहा है, धन्यम धन्यम अद्य पृथ्वी देवी आज धन्य है, जब से सृष्टि है सृष्टि के प्रारंभ से ही पृथ्वी देवी सब समय भगवान का अनुवर्तन करती है, अनुवर्तन मैंने क्या, सब समय भगवान की सेवा करती है, जितने भी अवतार आएंगे वो तो पृथ्वी पर आएंगे और पृथ्वी पर अपने चरणों का छाप रखेंगे और पृथ्वी किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा करेंगे। यहाँ पर पौगंड वयस में पौगंड वयस 5 वर्ष से लेकर के साधारण रूप में 9 वर्ष तक माना जाता है, कृष्ण का 3.5 से लेकर के 5.5-6 तक ये पौगंड रख लो। गोपलीला में भगवान वृंदावन में वृंदावन के सद्गुण से परम प्रसन्न होकर के करें धरणी देवी तो अनादि काल से भगवान की सेवा करती हैं, उनको सुयोग मिलता है, किंतु आज ही पृथ्वी धन्य हुई, रामचंद्र भी आए, जितने भी अवतार आए भगवान के प्रारंभ से सब पृथ्वी लोक में विचरण किए, जूता पूता हम लोगों के समय में ही चालू नहीं था, खड़ाऊ कुछ कुछ था, आज से 50, 60 या 65 वर्ष की बात मुझे याद है, जूता बहुत कम लोग पहनते थे, अधिकांश लोग गांव में खड़ाऊ पहनते थे थोड़ा सा, और नहीं तो दिन भर रात भर नंगे पैर चलते, दूषित पदार्थ नहीं थे कोई चीज, आज जैसे ये कुलतार का रोड है और कितने गंदे चीजें रहती हैं, रासायनिक चीजें होती हैं, ये सब लग करके जहाँ कहीं कट जाएगा और वो लग जाएगा, पहले ये सब चीजें नहीं थी, सब लोग खाली पैर चलते थे, अधिक से अधिक खड़ाऊ पहनने थे, खड़ाऊ पहनने का बड़ा भारी गुण है, पैरों के बीच के अंगुलियों में जो खड़ाऊ की जो खूंटी होती है वो यहाँ तक काम करती है, सब जगह वो काम करती है, इसलिए ये लोग सब व्यवहार करते, स्त्रियाँ तो व्यवहार ही नहीं करना जानती थी, चप्पल और जूता कोई जानता ही नहीं था पहले, तो इसका भी लाभ होता था ना, पृथ्वी से डायरेक्ट संबंध होने से शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता था, आदमी खुले शरीर ही रहते थे अधिकांश रूप, तो यहाँ भगवान के जितने भी अवतार और विभूतियां हैं उनसे पृथ्वी का संपर्क हुआ, पहले बराह देव ने भी पृथ्वी के अपने दांतों पर धारण किया और उन्हीं से पृथ्वी और धन्य हुई, तो उससे उद्भिता और रमिता अभिरमिता शब्द का प्रयोग किया गया है, अभिरमिता मैंने बरादेव के द्वारा लालित पालित सभी प्रकार से हुई और उसी बरादेव का पुत्र हुआ, तो कहते हैं कि शेष रूप में यहां तक कि पृथ्वी को शेष रूप में अपने मस्तक पर धारण किया, किंतु उस समय धन्य तो हुई किंतु अति धन्य नहीं, इसलिए आज ही आप सबसे अधिक धन्य हैं, परम सौभाग्यती हुई हैं। यहाँ पर धन्य होने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर धन्य होने का तात्पर्य भक्ति धन से बोला गया, पृथ्वी देवी आज धन्य हुई, आज भक्ति से भरपूर हो गई। आज उन्होंने साक्षात रूप में उनके चरणों की सेवा की। कैसे? फूलों से, अपनी घासों से, सब प्रकार से पृथ्वी ने उनकी सेवा की। ये गह्वरें इत्यादि, पर्वत इत्यादि क्या है? पर्वत इत्यादि या ना, ये सब पृथ्वी के अंग हैं। कोई पृथ्वी का सिर है, कोई पैर है, कोई कुछ है, सब अंगों का ये सब समावेश इनके द्वारा बतलाया जाता है। वृक्षराजी इत्यादि इनकी रोमावलियां इत्यादि, ये नदियां सब उनकी सुषुम्ना इत्यादि नाड़ियां हैं। इसमें भक्ति ही धन है। विशेष करके यह यदि भक्ति, प्रेमा भक्ति यदि हो जाए कृष्ण के प्रति, तो कहना ही क्या, क्योंकि बतलाया गया है धर्मो मक्ति भक्त कृत प्रोक्त, धर्म इष्ट धनम पुंसाम, पुरुषों के लिए धर्म ही धन है और उस धन में भक्ति धन ही मूल धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, चैतन्य चेतामृत ने भी कहा है, श्रीमद भागवत इत्यादि, धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त, हमारी भक्ति ही लोगों का भक्ति धन ही एकमात्र धन है और धन सब धन नहीं है। इसलिए आज भक्ति को, पृथ्वी देवी को कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति से, स्पर्श से ये भक्ति धन मिला है। जिस भक्ति धन के प्राप्त होने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब तुच्छ हो जाते हैं। हम लोग अभी तुच्छ नहीं कर रहे हैं इसलिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि सबकी अभी किसी न किसी रूप में जरूर कुछ बनी हुई है। ये सब मुख से यद्यपि कह रहे हैं कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहते, किंतु किसी न किसी रूप में जरूर चाहते हैं। अभी कोई गला पकड़ दे और सांस आने जाए न जाए तो हम नहीं चाहेंगे कि हाथ उसे छुटकारा पा जाए, हाथ हटा दे, तो ये तो एक तरह की मुक्ति हुई। ये संसार में हम लोग जन्म जन्मांतर से क्लेशों में पीस रहे हैं, कौन नहीं चाहता है जब हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। ये किसी न किसी रूप में जरूर अवस्थित हम लोगों में, धन की भी लालसा वैसे सब चीजों की, धर्म अर्थ काम सबकी, किंतु भक्ति यदि हो जाएगी तो ये सबकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी आंतरिक रूप से, स्वाभाविक रूप से। इसी प्रकार प्रेम संपत्ति युक्त होने पर आज भक्ति देवी को प्रेम रूपी धन मिला है। कैसे? कृष्ण के उन सुकोमल चरणों को पा करके जिसकी लक्ष्मी भी इस प्रिया करती, लक्ष्मी जी इस प्रिया करती हैं और जिनको नहीं पा पाती, आज इनको इतनी सरलता के साथ में श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श का सौभाग्य मिला इनको, उसी को विस्तारित रूप में यहाँ पर बतला रहे हैं। तीर्ण गुण इत्यादि भी तुम्हारे धन्य है, तुम्हारे रोए भी धन्य है। आज स्वर्ग के नहीं, यम धन्य धन्य यम, यम सब ऐसे निकट की कोई चीज को बतला रहे, कृष्ण बतला रहे हैं अपने अपने हाथों से। ये जो तुम्हारी वृक्षावलियां है, यम मैंने यहाँ इस वृंदावन भूमि की ही परुलता है, धन्य है। और स्वर्ग इत्यादि के नहीं, पृथ्वी के जितने हैं सब पृथ्वी का भी नहीं लेते हैं, हाथों से जिनको दिखला रहे हैं, अतः तो वृंदावन ये जो तीर्ण भूख और गुल और लता है ये सब धन्य है। क्यों? ये लो अतः तो मथुरा में गोपालन गोपाल के रूप में अवतीर्ण और नंद ब्रज में गोचारण करते हुए जो लीला कर रहे हैं उस समय ये कृष्ण कह रहे हैं। आप जब लीला करते हुए यहाँ पर पधारते हैं इस वन में, छोटी छोटी घासों के ऊपर में चलते हैं, वो इन तीर्ण गो गुलमलताओं को यह सही रूप में यह आपके चरण के धूलि का स्पर्श मिल जाता है। अपित धरणी तीर्ण गुल्म आदि पृथ्वी में यह तीर्ण गुल्म है। कृष्ण ने उनकी रोमावली रूप वृक्ष को स्पर्श किया अपने चरणों से, किंतु धन्य कौन हुआ? ये तो हुए ही, पृथ्वी स्वयं धन्य होती है जिसके ये रुएं हैं। पृथ्वी का अंग अंग पुलकित हो रहा है। कैसे पुलकित हो रहा है, कैसे समझा? छोटे छोटे छोटी छोटी घासें होती हैं। अभी चले जाओ कहीं इधर उधर, छोटी सी घास, शंख पुष्पी फूल, सादे सफेद सफेद, कोई लाल लाल फूल, कोई नीले, कोई कुछ, सब खिले हुए। विशेष करके वृंदावन में सब प्रकार के फूल खिले हुए। मानो ये पृथ्वी देवी हंस रही है चारों तरफ से, पुलकित हो रही है, रोमांचित हो रही है। कोई प्रश्न बीच में यदि कर दे, ननु अरे रामचंद्र जी तो 12 वर्ष तक, कृष्णचंद्र तो कितने दिन, मान लिया कि 3.5 वर्ष से लेकर और 10-10.5 वर्ष तक,
8 मास तक
वृंदावन में वो रहे, गोचारण इत्यादि किया, उनके चरणों का स्पर्श इन लोगों से। और रामचंद्र दंडकारण्य में कितने दिन रहे, 14 वर्ष वनवास में, और कहाँ कहाँ घूमे, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ दक्षिण भारत से लेकर के एकदम लंका तक में गए, खाली पैर गए, जटाजूट रमा करके गए। तो पृथ्वी उनके विहार से, उनके चरणों का स्पर्श नहीं पाया, खूब पाया, होने पर भी कहते हैं उस समय इतनी धन्य नहीं हुई। इसका कारण क्या? कोई रोता हुआ जाए और किसी का स्पर्श मिले तो वो स्पर्श अच्छा है, न कि हंसता हुआ बेश आनंद के साथ में उसका स्पर्श हो जाए वो अच्छा है। कृष्ण वही राम के रूप में हासिते 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 करते जाते। दूसरी बात, घर से निकाला हुआ है ना, जैसे भी हो, किसी भी कारण से हो, वो पिताजी का आदेश पालन करने के लिए पिताजी ने आदेश दिया है तुम घर छोड़ करके 14 वर्ष के लिए बन जाओ। मैया उसका कारण बनी, घर में विवाद और कलह हो गया ने? अब उस कलह को शांत करने के लिए घर से रामचंद्र जी ने कुछ भी नहीं लिया, पत्नी को ले लिया, भाई भी जब नहीं माना तो उनको भी ले लिया, विलाप करती हुई सबको छोड़ करके और वन में चले आए, जटाजूट बांध लिया, वनवासी का वेश धारण कर लिया और वन वन में भटक रहे। और अंतिम वर्ष तो जैसा बीता, सीता जी चोरी चली गई और विलाप करते हुए वनों वनों में घूम रहे हैं दुखी होकर के, पहले भी जो कुछ रहते दुखी होकर के और अब भी दुखी होकर। इसलिए उस समय पृथ्वी इतनी धन्य नहीं हुई। और इस समय पौगंड वेश में कृष्ण वयसंधि काल में अत्यंत सुंदर मुस्कुराते हुए, मैया ने सजा दिया है सुंदर सुंदर गायों को, दुधारू गायों को, खुदकते हुए बछड़ों के सहित मोर मुकुट उनको पहना दिया, अपनी प्यारी बंसी साथ में ले ली और सिदाम सुबल सखा इत्यादियों के साथ में निकल गए। मन जैसे हिरण के बच्चे फुदकते हुए रहते हैं प्रसन्नता से, कृष्ण ऐसे प्रसन्न चित्त होकर के सबके साथ में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मालाओं का ग्रंथन कर रहे हैं, फूल तोड़ करके सखाओं को सजा रहे हैं, सखा इनको सजा रहे हैं। और किसी बहाने से कुसुम सरोवर पहुंच जाते हैं, कभी सूर्य कुंड पहुंच जाते हैं, कहीं राधा कुंड पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके किसी कैसी कैसी रसमय लीलाएं करते हैं, अपने हाथों से फूलों का चयन करके माला ग्रंथन करते हैं, बच्चों को पहनाते हैं, बच्चे इनको पहनाते हैं। और कृष्ण विशेष मनोयोग से एक लंबी सी सुंदर माला उन्होंने ग्रंथन किया, वो किसी अपने सखा को नहीं पहनाया, किस लिए उसको बनाया,
बांध करके रख दिया।
भीतर भीतर कितना आनंद हो रहा है जो हम किसके लिए माला ग्रंथन कर रहे हैं और किसे हम पहनाएंगे। उन फूलों का कितना सौभाग्य समझो जिसको कृष्ण चयन करके और अपने सुंदर हाथों से सुंदर माला बनाई और कृष्ण के अंगों का समस्त सौरभ उस माला में चली गई और फिर ले जाकर के किसी को पहनाया और पहना करके कृष्ण को बड़ा भारी आनंद हुआ। रामलीला में ऐसा हुआ ये सब चीजें नहीं, दुखी पूर्वक जीवन बिताया। और यहाँ पर कम कितने हर्ष के साथ उस समय कृष्ण के हाथों का स्पर्श पैरों का स्पर्श पाकर के पृथ्वी देवी धन्य हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आज ही पृथ्वी देवी धरणी अद्य आज ही पृथ्वी देवी का सौभाग्य सबसे अधिक है, धन्य आदि हो। इयम पद से पद लिंग और विभक्ति के व्यत्यय से धन्य इति वत् जथा योग्य रूप से सर्वत्र प्रवर्तित होते का स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी ये दोनों में भी होगा। जहाँ वृक्ष राजी होगा वहां पर पुल्लिंगवत इसका व्यवहार समझो कुछ परिवर्तन के साथ में, और जहां पर की लताएं होंगी वहां पर उस रूप में, और सखाओं के लिए सखाओं के स्पर्श के लिए पुल्लिंग के रूप में उसका व्यवहार हो जाएगा, और गोपियों के साथ में यह बतलाया ना गोप्यो अंतरेण। अब यहाँ इयम शब्द का ये कुछ अंतर हो करके गोपियों के लिए ये प्रयोग हो जाएगा ने? गोपियों के लिए कुछ परिवर्तन के साथ में यहाँ पर यम क्या होगा
यम
यम यम इटा क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है?
यम स्त्रीलिंग,
यम तो स्त्रीलिंग है ना, किंतु जब पुरुष के लिए व्यवहार होगा थोड़ा सा कुछ कहते हैं जैसे वो प्रत्यय इत्यादि के द्वारा किसी प्रकार से अंतर उठता हो जाएगा। तो ये सबके लिए इसका प्रयोग समझो। तो यहाँ पर कह रहे हैं यम शब्द के बारे, यहाँ की गुल्म लताएं, यहाँ की घासें, यहाँ के यहाँ की गायें, यहाँ के गोवत्स, यहाँ की ही सब कुछ और यहाँ की ही गोपियाँ। गोपियाँ पृथ्वी में तो सब जगह, ऐसा कौन देश है जहाँ पर की गोप गोपी नहीं है, अहिर जाति नहीं है। बंगाल में भी अभीर है, गुर्जर देश में भी अभीर है, सब देशों में अभीर है, किंतु वहां के ये सब धन्य नहीं है उतने। ये वृंदावन के लिए नियम यहाँ के लिए ही अधिक धन्य बतला रहे हैं। क्योंकि कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर के पौगंड वेश में वयश में कुछ मतवारे जैसे होकर, जैसे कि लिखा है ना, जैसे एक कान में कनेर का फूल लगा दिया, कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिकारम एक वचन और कर्णयो द्विवचन, एक को दोनों में कैसे व्यवहार करते हैं, मतलब कभी इधर और कभी इधर। उसी तरह से इसलिए इन रस विशेषों के द्वारा स्पर्श कर रहे हैं, किसी ने किसी को स्पर्श किया ऐसे स्पर्श कर दिया, थप्पड़ मारा, किसी ने प्रेम से थप्पड़ मारा, दोनों एक चीज नहीं होगा, दोनों में अत्यंत उल्टो हो जाए। रामचंद्र जी ने भी पृथ्वी का स्पर्श किया, नृसिंह देव जी ने पृथ्वी का स्पर्श किया, जब नृसिंह देव ने अत्यंत क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यपु का वध किया और उस समय में खूब भयंकर रूप धारण किया, आकाश पाताल सभी लोग भय से भीत हो गए, उस समय पृथ्वी का स्पर्श हुआ कि नहीं, तो पृथ्वी जी को खूब आनंददायक हुआ होगा, इसलिए कृष्ण यहाँ पर जिस रूप में है उनका वेश उनका रूप कृष्ण आनंद पूर्वक जो स्पर्श कर रहे हैं उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को आज धन्य मान रहे हैं। आज ही पृथ्वी और उनके तीर्ण गुण इत्यादि धन्य, पहले नहीं, जिस समय आप चरणों से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं उस समय को उनको कृष्ण को स्मरण हो जाता है। ओ, गोपी गीत का अंतिम गोपी गीत में यत्ते सुजात चरणम्बरुहस्तनेषु भीतास्तनै गदिमहि करकशेषु तेनात्मन अतः तद्व्यथितं न किञ्चित् कुर्वाद भ्रमते। यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं जिस प्रकार से गोपियां कृष्ण के चरणों को बड़े धीरे धीरे रूप से संतापित करते हुए अपने शरणों पर धारण करती हैं डर करके, उस समय कृष्ण को आनंद से माने इतना आनंदित होते हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। आज मानो पृथ्वी को वही चरण कृष्ण के श्री चरण आज पृथ्वी अपने श्री अंग पर धारण कर रही, कृष्ण मन ही मन में अनुभव कर रही, अनुभव कर करके प्रसन्न होकर के अपने भावों को बलदेव जी के लिए व्यक्त कर रहे हैं। करें कर जाभी मृष्टा, पैर से तो पृथ्वी को धारण स्पर्श किया, गुरु लताओं तीर्ण इत्यादि छोटे छोटे हैं और लताओं के लिए उसमें फल फूल रही हैं, खूब सुंदर फूल लगे हुए हैं, उनसे पुष्प चयन कर रहे हैं, मानो उसको स्पर्श कर रहे हैं जैसे गोपियों को स्पर्श कर रहे हैं इन लताओं को, तो कृष्ण को उसमें की लीला का स्मरण होता है और वो भावना हृदय में आती है, अत्यंत प्रसन्नता से पृथ्वी के लिए कहते हैं ये तेरे ही तो सी अंग है, बस भावना में बहने लगते हैं, इसलिए पृथ्वी देवी आज ही धन्य हुई। जमुना इत्यादि नदियां नद्यो अद्रय खग मृगा सदा सदै अवलोक, नदियां नदियों में भी जमुना विशेषकर और मानसी गंगा ये भी नदी थी, अब तो सरोवर के रूप में हो गए, ये सब नदियां धन्य है। किस लिए धन्य है? गोवर्धन आदि पर्वत मयूर इत्यादि पक्षी कृष्ण सार इत्यादि हरिण आपके परम सदयावलोकन से धन्य हो, पशु पक्षी जो मयूर हैं और मृग है कृष्ण के निकट नहीं आएंगे, कभी कभी आ जाते हैं निकट तक, किंतु यदि कृष्ण और निकट आएंगे तो क्या करेंगे, दौड़ करके थोड़ा सा भग जाएंगे, तो उनके प्रति सदयावलोकन जैसे मृगा इनकी तरफ में हिरणे कृष्ण के तरफ में अवलोकन कर रही हैं बड़े प्रेम के साथ में हृदय में लालसा लेकर के, ठीक कृष्ण भी सदयावलोकन, यहाँ पर कृष्ण को स्मरण आता है जैसे कृष्ण गोचारण में जा रहे हैं और गोपियां छिप छिप करके कृष्ण का दर्शन कर रही हैं तो कृष्ण उनकी तरफ में कैसे दृष्टि से देखते हैं, बस उनको यही स्मरण हो जाता है। पृथ्वी को और पृथ्वी की इन सब वस्तुओं को धन्य बतला रहे हैं। तो पक्षी सकल भी जितने पक्षी मैंने मयूर कोकिल इत्यादि सभी के लिए इसको प्रयोग कर, यदि पर्वत और नदी के लिए किस लिए कह रहे हैं, विशेष करके उनकी लीलाएं जमुना में होती हैं, जमुना के तीर पर ही वो क्या है बसत बने बनवाली
धीर समेरे
जमुना तीर, वो देखो जमुना के तीर पर, जमुना तीर का एक विशेष ही महत्व है, वृंदावन भी जमुना के तीर पर बसा हुआ है, खेलन वन इत्यादि सब वहीं पर तट पर बसा है, ये नंदगांव इत्यादि बरसाना भी जमुना वहीं से जमुना पर में उन लोगों का मिलन होता है, यमुना का कितना सौभाग्य है कि उनको पटरानी मान लिया गया, तो नदी उसमें स्नान करते हैं, पान करते हैं। यमुना एक ऐसी ऐसी सौभाग्यवान नाथ है। गोपियां घर से घड़ा लेकर के चलती हैं, पानी भरने के लिए जा रही, कहां जा रही है पूछा सास ने, कहां जा रही है तो क्या कहेंगे,
यमुना जी
जा रही। अब वो प्रश्न नहीं करेंगे कि क्यों जा रही, कहे क्यों जा रही है, तो घड़ा रख दिया घर में और घर में जाकर के बैठ गए, दिन भर पानी नहीं मिलेगा इसलिए कोई वहां पर चला के चौथुराई वहां पर नहीं चलेगी, मना करने का कोई उपाय नहीं। पहले तो यमुना से ही पानी लाते थे, मानसी गंगा से पानी लाते थे, अभी भी बहुत दूर दूर से गांवों से एक एक मील चल करके पानी भर करके लाते हैं, खारी पानी है सब जगह। तो उस समय तो और कोई उस समय न तो बोरिंग था न कुछ था, खारी पानी रहेगी कुएं भी होंगे तो इसलिए सभी लोग यमुना में पानी भरने जाते हैं। हाँ? छल करने का तो कह देंगे कहाँ जा रही है, तो जा रही है तो मैं नहीं जाऊं कह देंगे, अच्छा तो मैं नहीं जाती लो तो क्या करेंगे, अपने तो पानी ला नहीं सकती, तो इसलिए मिलने में सहायक यमुना जी, इसलिए पानी भरने का स्थान बना करके कृष्ण से वहां पर मिलन हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण की अधिकांश लीला यमुना के किनारे, उसी में स्नान सखाओं के साथ में स्नान, गऊ को पानी पिलाना सब कृष्ण की वहीं पर लीलाएं होती हैं। इसलिए नदी, नदी में बिहार का भी वर्णन है और पर्वत इत्यादि, पर्वत विशेष रूप से गह्वर कुंज वन सब वहां पर रहते हैं। कृष्ण उन कुंजों में बिहार करते हैं, शयन करते हैं, उनके क्रीड़ा का क्षेत्र है, सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में, गौओं के साथ में, जितनी लीलाओं का ये सब है वन और पर्वत है। और पर्वत के ही चारों तरफ में वन हो सकते हैं अधिक रूप में, इसलिए नदी में जलपान अवगाहन और पर्वतों के शिरोदेश पर आरोहण इत्यादि, वहां पर शयन, उनके लिए बैठने का स्थान, विहार इत्यादि संपन्न होता है, इसलिए उनके प्रति सदयावलोकन, सदयावलोकन मैंने क्या, उनके प्रति करुणा भरी कारुण्य अमृत यहां पर समझो, उन पर दया करने के लिए नहीं, बल्कि वो लोग मिलने का और कृष्ण के क्रीड़ा के सहाय्य हैं और सब प्रकार से ये गुरिराज गोवर्धन उनकी सेवा करते हैं, इसलिए वो है ना क्या है, हंताय मद्र अवला हरिदास वर्यो
जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमो मानव तनोति सह भूगणयस्तयो यत् पानीयसु यवस कंदर कंदमूलो,
इन सब के लिए वहां पर यहाँ तक कि सब चीजें वहां पर कृष्ण के लिए सुलभ कर देते हैं। कहाँ जा रही हैं गोपियां, सिर पर गृहित दुग्ध दधि इत्यादि लेकर के जा रहे, कहाँ जा रहे, गोविंद कुंड में हम जा रहे हैं, गोविंद कुंड कहाँ है,
गोवर्धन
में। अब वहां पर जहां पर दान घाटी पार कर रही है गोवर्धन की, तो वहां पर कृष्ण सखाओं को लेकर के खड़े हैं, वहां पर कैसी कैसी अद्भुत लीला है। आज गोवर्धन जी नहीं रहते, आज वो वर्षा नामक कौन पर्वत गौहर वन और पर्वत नहीं रहते, साकरी खोर पर्वत, विष्णु पर्वत और ब्रह्म पर्वत इत्यादि नहीं होते, तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कहाँ होती। काम्य वन में यदि वो पर्वत नहीं होता जिस पर चरण पहाड़ी इत्यादि है, सखीगिरी पर्वत है, कैसी सुंदर सब स्थान है, ये सब लीलाएं नहीं होती। कृष्ण को सभी स्मरण हो रहा है उन लीलाओं का, और स्मरण करते हुए इन सब लीलाओं के लिए ये सब पृथ्वी यदि नहीं होती, न पर्वत होते हैं, न जमुना होती, न वन होता है, न कुछ होता, ये सब लीलाएं संभव पर ही नहीं होती, इसलिए पृथ्वी को धन्य कहा। नदियों में श्रेष्ठ यमुना नदी है, अद्रियों में हरिदास वर्ज, हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ प्रसिद्ध गोवर्धन जी है। इन्हीं के लिए जाति के वजह से यहाँ पर पर्वत और नदी तृण विरुत्स खग मृग ये सब कहा, किंतु ये सब जो ये सब वृंदावन के लिए ही ये सब कहा गया है स्पेशली। यद्यपि खग मृग जाति विशेष के लिए ही यहाँ पर कहा गया है, किंतु वृंदावन के लिए विशेष समझाया। वृंदावन के खग, वृंदावन के मृग, वृंदावन के ही मयूर, वृंदावन के ही हिरण, सब कुछ वृंदावन का ही ये समझ सहज रूप में है। सुख सारी वायु जो कुछ कहो, नद नदी सरोवर सब कुछ यहीं के। कहते हैं कि यदि यद्यपि खग और मृग हैं, खग माने पक्षी और मृग, इनसे कृष्ण के चरणों का हाथों का स्पर्श सबसे नहीं होता। मृग देखते ही भाग जाएंगे, कोयल भाग उड़ जाएगी, मयूर भी भाग जाएंगे, तो इनके ऊपर में कैसे सदयावलोकन, सदयावलोकन करते हैं। कहते हैं कि हो कैसे डैने को फैला करके नृत्य कर रहे हैं, ताल पर ताल देकर के नाच रहे हैं, हिरण कैसे अपने हिरणियों को साथ में लेकर के और हिरणी को आगे करके पीछे वो चल रहा है, और बड़ी करुण नेत्र से कृष्ण के दृष्टि में दृष्टि मिला करके देख रही है, और हिरण कह रहे हैं कि तुम देखो दस, तुम धन्य हो, तुम्हारे नाते आज हम भी धन्य, डर मत करो, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। अरे कहेगा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। गोपियां कह रही हमारे लिए ये